हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान का गुस्सा एक ऐसी आग थी जो उसके अंदर सालों से धधक रही थी, और आज अदिति ने उसे हवा दे दी थी। उसकी आवाज गुर्राते शेर की तरह गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहने की? वो मेरी दुनिया है, मेरी ताकत है, और मेरा आइडिया तुम जैसी लापरवाह घमंडी इन्वेस्टर के पैसे से बड़ा है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारी शर्तें नहीं चाहिए। अदिति की आंखें डर से फैल गईं। उसके हाथ रूहान की कलाइयों को खुरचने लगे, लेकिन वो पकड़ नहीं छुड़ा पा रही थी। उसका चेहरा लाल होने लगा था और होंठ नीले पड़ रहे थे। तभी ऑफिस का दरवाज़ा जोर से खुला। एक सुरक्षा गार्ड और अदिति की असिस्टेंट, एक युवा लड़की, अंदर दौड़ी। मैडम, छोड़िए उन्हें, असिस्टेंट चीखी। सिक्योरिटी गार्ड ने रूहान को पीछे से पकड़ने की कोशिश की। उस झटके से रूहान का ध्यान टूटा, उसने अदिति को छोड़ दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी, खांसते हुए, अपने गले को रगड़ते हुए।
कॉल द पुलिस फास्ट,
अदिति ने घरघराती आवाज में कहा। रूहान सांसें तेज चलाते हुए वहीं खड़ा था। उसकी मुठ्ठियां अब भी भींची हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों से गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अदिति ने आंसू भरी नजरों से फिर रूहान की तरफ देखा। रूहान ने वहां पड़ी टेबल को लात मारते हुए कहा, ब्लडी इडियट, आइंदा से मेरी मैडम जी के बारे में बोलने से पहले हजार बार सोचना। अब रूहान लगभग चिल्लाते हुए वहां रखे हर सामान को तोड़ रहा था। अदिति की असिस्टेंट ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया था और उसके बाद वेदांत को, क्योंकि उसे पता था कि रूहान वेदांत का भाई है। वेदांत जो अपना काम कर रहा था, उसने जैसे ही अपने फोन को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसे अचानक ही याद आया कि रूहान आज अदिति के साथ मीटिंग करने गया था, और उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से कॉल पिकअप किया। उधर से अदिति की असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, सर, आपके भाई ने मैडम की जान लेने की कोशिश की है और यहाँ का सारा सामान भी तोड़ दिया है। हमने पुलिस को कॉल किया है, लेकिन फिर भी आपके भाई को कंट्रोल कर पाना हमारे सिक्योरिटी गार्ड के बस की बात भी नहीं है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। ये सुनते ही वेदांत के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसका हाथ अपने फ़ोन पर हल्का सा कांप उठा। शादी के बाद रूहान का ये पहला केस था जहां से वेदांत को इसकी शिकायत मिल रही थी। शादी से पहले तो ऐसा बहुत बार हुआ था, रूहान हर किसी से झगड़ा कर लेता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी वो बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था, और वेदांत को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो लड़खड़ाते कदमों से उठा और असिस्टेंट से अपनी कमज़ोर लेकिन काफ़ी आवाज़ में बोला, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इतना बोलकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया और फिर लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर जाने लगा। अनाही, जो अपने हाथ में फाइल लिए उसे कुछ पूछने आ रही थी, उसने जैसे ही देखा कि वेदांत इतनी हड़बड़ी में कहीं जा रहा है, तो उसने जल्दी से कहा, क्या हुआ वेदांत जी, आप कहाँ जा रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? कहीं प्रिया को तो कुछ नहीं हुआ है? प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को काफ़ी तकलीफ होती है, कभी उनका कुछ दर्द करने लगता है तो कभी उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अनाही को यही लग रहा था कि ज़रूर प्रिया ने वेदांत को बुलाया होगा, क्योंकि वेदांत उसके अलावा तो किसी के लिए ऐसी जल्दबाजी नहीं करता है। तो वहीं वेदांत को नहीं समझ आ रहा था कि वो अनाही से फ़िलहाल क्या कहे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, रूहान के पास जा रहा हूँ। ये सुनते ही अनाही की आँखें फैल गईं और उसने घबराते हुए कहा, कुछ हुआ रूहान जी को? अनाही की आवाज़ में डर साफ छलक रहा था। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं पता उसे कुछ हुआ है या नहीं, लेकिन वो लोगों को बहुत कुछ कर देता है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा उसे रोकने के लिए। अनाही ने अपनी फाइल को जल्दी से अंदर की तरफ फेंकते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वेदांत के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अनाही से बहस करे या उसे यहाँ रोकने की कोशिश करे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो लगभग दौड़ते हुए अब लिफ्ट की तरफ चला गया और अनाही भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। 10 मिनट बाद वेदांत और अनाही सांस फूलते हुए इंपीरियल टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचे। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और अंदर का नज़ारा बर्बादी का मंजर था। टेबल उल्टी पड़ी थी, कुर्सियां टूटी हुई थीं, कागजात और ग्लास के टुकड़े हर जगह बिखरे थे। बीच में खड़े रूहान की हालत सबसे भयानक थी। उसकी शर्ट फटी हुई थी, बाल उलझे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी जंगली चमक थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने दीवार के सहारे खड़ी अदिति का गला दोबारा पकड़ रखा था। वो एक जानवर की तरह गुर्रा रहा था, तुम्हें सबक सिखाना है, तुम्हें। रूहान, छोड़ उसे, वेदांत ने दहाड़ लगाई, पर रूहान ने सुना ही नहीं। वो तो अपने गुस्से के अंधकार में डूबा हुआ था। अदिति की आंखें डर से बंद हो रही थीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अनाही, जो अब तक सहमी हुई वेदांत के पीछे खड़ी थी, अचानक आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरा दर्द और गुस्सा था। उसने रूहान के पास जाकर पूरे जोर से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई, इतना तेज कि रूहान का सिर एक तरफ झटक गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और अदिति खांसती हुई फर्श पर बैठ गई। रूहान ने आंखें फाड़कर अनाही की ओर देखा, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से झिंझोड़कर जगा दिया हो। उसकी आंखों की जंगली चमक धुंधली पड़ने लगी। ये क्या कर रहे हो आप रूहान जी? अनाही की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब ताकत थी। रूहान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं मैडम जी ये रूहान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले अनाही ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप। इसके लिए आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इतने घटिया इंसान हैं जो किसी लड़की पर भी हाथ उठा सकते हैं? अपनी हालत देखी है उसकी, वो मरने वाली थी। मुझे शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद आपके बारे में जो सुना था वो सब कुछ सच था। आपने मेरे सामने सिर्फ एक मुखौटा पहन रखा था अच्छे होने का, ताकि आप मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा सकें, और मैं पागल आपकी बातों में आती चली गई। बोलते बोलते अनाही की आवाज़ बैठने लगी थी। उसकी आंखों में पानी भर आया था और अब वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। उसे रूहान से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रूहान को थप्पड़ मारकर वो ये कभी नहीं करना चाहती थी। उसका वो हाथ बुरी तरह कांप रहा था जिसे उसने रूहान को थप्पड़ मारा था। रूहान को फिलहाल ये तो नहीं समझ आ रहा था कि उसने क्या किया है और उसे क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे अपने से दूर जाती अपनी मैडम जी जरूर नजर आ रही थी, और अनाही से अलग होने का खौफ उसका बढ़ता ही जा रहा था। वो तेज कदमों से अनाही की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं मैडम जी, आप यहाँ तक मेरे साथ आकर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। चाहे आपको तकलीफ हो या ना हो, चाहे मैं कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन अब आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। रूहान बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वहीं वेदांत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ उसकी दोस्त थी तो दूसरी तरफ उसका भाई। फिलहाल अगर अनाही रूहान को थप्पड़ नहीं मारती तो वेदांत जरूर मार देता, पर शायद तब बात कुछ और होती, क्योंकि रूहान को वेदांत के थप्पड़ खाने की आदत है। उसे उतना सदमा नहीं लगता जितना उसे अनाही का थप्पड़ लगने पर लगा है। अनाही रूहान की बाप का कोई जवाब दे पाती उसे पहले ही वहां दो पुलिस इंस्पेक्टर आ गए। उन्हें देखते ही अदिति की हिम्मत बढ़ गई। वो उठी और जल्दी से पुलिस वाले के पास जाकर अपने गले की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखिए इंस्पेक्टर, किसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है? एक रेप्यूटेड बिजनेस वूमन पर हाथ उठाया है, इसकी लंबी जेल होनी चाहिए।
पुलिस इंस्पेक्टर ध्यान से पूरे ऑफिस को नोटिस कर रहे थे। फिर उनकी नज़र ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और उनमें से एक इंस्पेक्टर ने अदिति की असिस्टेंट से कहा, हमें उस सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। और फिर उनमें से दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, पर हमें आपके भाई को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब तक सारे सबूत नहीं मिल जाते तब तक इन्हें हम अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं।